राम। श्रीमद् भगवद गीता पाठ 11वां अध्याय श्लोक 45 से 55। 11वां अध्याय श्लोक 45 से अध्याय समाप्ति पर्यंत।
Oh. महर्षिसिद्धसंघा सुवन्दिता Okay.
भगवद गीता पाठ 11वां अध्याय श्लोक 45 से 55 11वां अध्याय श्लोक 45 से अध्याय समाप्ति पर्यंत।
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
अलिष्टपूर्वं रिदोष्मि दृष्ट्वा भयेन च प्राव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद एवेश जगन्निवास किरीटिनौ गदिनौ चक्रुहस्त मेच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवेश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं वेश्वमनन्तमाद्यं यान्मे त्वरन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तवो गिरुग्रैः एवं रूपाशक्यं नृलोके द्रष्टुं प्रदन्येन गुरु प्रवीर मा देभ्य धामा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेदभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपविदं प्रपश्य। सञ्जयुवाच इत्यर्जुनो वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास तद्भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवभूर्महात्मा। अर्जुन उवाच भ्रेष्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्म संवृत्त सचेता प्रकृतिं गत। श्रीभगवानुवाच सुदूर्दर्शमिदं रूपं द्वेषवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मामेति पाण्डव। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ऋग्वेद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
तो बोलो ही अभी क्या बात है।
आपने निषेधात्मक साधन बताया तो अब इधर हम तो विधि आत्मक साधन करते हैं जो
अच्छा ये भी अच्छा है। निषेधात्मक करना है तो वो विद्यात्मक और निषेधात्मक दोनों साधन है। निषेधात्मक दुर्गुण दुराचारों को दूर करने के लिए निषेधात्मक जैसे सत्य भाषण है विद्यात्मक है झूठ नहीं बोलना ही निषेधात्मक है। तो त्याज में निषेधात्मक बढ़िया है नहीं विचार में करो निषेधात्मक में यही है कि जैसे गीता पढ़ना है तो गीता निषेधात्मक लाना ही हो लाने जरूरत नहीं है तो फिर गीता से विरुद्ध पड़े वो नहीं पढ़ना है। उपन्यास है विद्या गर्भ है ऐसी ऐसी चीजें ये नहीं पढ़नी है अपने को उनका निषेध करना है इसमें निषेध ये ला रहा है। और परमात्मा है तो ये विद्यात्मक है और संसार नहीं है असत्य नहीं है निरा ये नहीं है ये निषेधात्मक है। भगवान ने योग के दो अर्थ किए हैं एक तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम ये निषेधात्मक है और समत्वम योग उचित ये विद्यात्मक है। समता का नाम योग है और दुख संयोग वियोग योग संगीतम दुख संयोग का वियोग है ये निषेधात्मक उसका नाम योग है। मानो दुख के संयोग का वियोग हो जाए तो समता आ जाएगी या समता आ जाएगी संयोग वियोग हो जाएगा दोनों को योग दिया हुआ नाम। और बोलो कोई बात चुप साधन तो हो चुप साधन कैसे हो चुप साधन में एक बात खास जानने की है आप कुछ भी नहीं करते हो स्वतः स्वाभाविक जब आप नींद लेने के लिए उद्यत होते हो तो नींद के लिए कोई उद्योग करना पड़ता है क्या कोई चिंतनक परिश्रमक कुछ करना पड़ता है क्या मानो कुछ भी नहीं करना है यही नींद लेने का उपाय है। मन सबसे निवृत्त होना यही है तो स्वतः जो संसार से निवृत्ति है उसमें स्थित रहना है ये सुख साधन है। स्वाभाविक संसार कोई बात याद नहीं है तो ये सुख साधन नींद से उठने पर सुगमता से होता है कोई चिंतन नहीं कोई स्वप्न का सुसुप्ति का जागृत का काम करना कुछ विचार नहीं स्वतः सिद्ध जो नहीं करना है वो सुख साधन है। जान करके क्रिया का निवृत्त करना वो दुख साधन ही हुआ है। ख्याल में आया नहीं? मानो स्वाभाविक स्वतः भी हमारा कोई पूर्ण नहीं है, कोई याद नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे चुप रहना है। स्वभाव सिद्ध, स्वतः सिद्ध। देखो
हम जागृति अवस्था में नाम स्मरण करते हैं और करते करते सो जाते हैं और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो नाम स्मरण चालू करते हैं। तो मध्यान्ह काल जो है स्वप्न और सुषुप्ति ये काल बीत रहा है तो नाम स्मरण होता है कि बंद पड़ता है?
ज्यादा अभ्यास होने से उसमें होता है, हर एक के लिए होता है। अभ्यास ज्यादा हो जा रहे पर ये उसमें भगवान की स्मृति रहती है तो नाम जब ज्यादा होने से नींद में भी नाम जब होता है तो उसकी पहचान क्या है कि जगते ही हम नाम को याद करते हैं, ये नहीं होगा। मन जगते ही नाम जब दिखेगा छूटे तब तो निरंतर हुआ है और अब पकड़ते हैं तो छूटा नहीं, आज महसूस होते मैं छूटा है, अब फिर नाम जब को शुरू करते हैं। आज ख्याल में आ गया नहीं बात नहीं मानो नाम जब निरंतर आनारा सुषुप्ति स्वप्न में भी होता था इसकी पहचान है कि जब सुबह नींद खुलती है तो नींद खुलते ही नाम जप हो रहा है ऐसा दिखेगा और ऐसा न दिख करके और नाम जप को याद करते हैं तो सुषुप्ति स्वप्न में नाम से छूटा है अब याद शुरू करते हैं ऐसा। इस तरह से ही तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा का चिंतन होता है तो वो चिंतन स्वतः ही परमात्मा स्वरूप में स्थिति है तो वो नींद जगते ही वैसी स्थिति भी है तब तो बोध हो गया। और वो नींद जगने के बाद में फिर विचार द्वारा उस तत्व का विचार करते हैं तो नींद में तत्व नहीं था तो मन तत्व ज्ञान नहीं हुआ अभ्यास चलता है ये पहचान है उसकी। फिर खुलासा कर दू जैसे हम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं तो साधन हम करते हैं तत्व के लिए वो तत्व बोध हुआ कि नहीं हुआ इसकी पहचान है। तत्व बोध होने पर जगने पर स्वतः ही बिना याद किए तत्व से जाती है तत्व बोध हो गया है और तत्व जागृत होते ही उसको हम याद करते हैं उसमें स्थित होते हैं तो अभी तो बोध हुआ नहीं है अब अभ्यास है ये पहचान है। जैसे अब अभी वृंदावन में हम रहते हैं तो नींद खुलते ही वृंदावन में है ऐसा भाव रहता तो वृंदावन की स्थिति है और वृंदावन को पकड़ते हैं तो स्थिति नहीं है अब याद करते हैं स्वतः ही मालूम होते वृंदावन में ही हम हैं ऐसा दिखता है स्वाभाविक ही। ऐसे नाम जब स्वतः ही हो रहा है मालूम से राम 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 हो रहा नींद खुल से तो हो ही रहा है उस पहले से नींद में जागृत में स्वप्न में सुसुप्ति में भी होता था। नारायण 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 ये जो कर्ण निपेक्ष की बात बताई है ना कर्ण निपेक्ष की बात में तो ये स्थिति बहुत जल्दी हो जाएगी। कर्ण सापेक्ष में देरी लगती है कर्ण निरपेक्ष में सही नहीं लगती है। इसका कारण क्या है कि सांसारिक काम जितने हम करते हैं वो सभी हम कर्ण सापेक्ष ही करते हैं कर्ण निरपेक्ष संसार काम होता ही नहीं तो आदत पड़ी हुई है मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हम विचार करते हैं तो यही अटकल परमात्मा की प्राप्ति में लगाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रवण करेंगे मनन करेंगे निरीक्षण करेंगे ध्यान करेंगे समाधि लगाएंगे ये सब के सब कर्ण सापेक्ष साधन होंगे इसमें देरी लगेगी। और कारण निरपेक्ष वो होगा कि भाई जहाँ बुद्धि नहीं लगेगी, मन नहीं लगेगा, ये सब संसार का अभाव जहाँ पर है वो तत्व स्वतः सिद्ध है। तो जो बनाई जाती है चीज वो तो कर्म सापेक्ष होती है, और जो बनी बनाई चीज है उसमें कारण के आरंभ थोड़ा सा कारण का होता है, जिसको कर्म निरपेक्ष होता है वो, मन वो बनाना नहीं है उसकी तो स्मृति लब्धा, जैसे भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में आश्रिता। तो स्मृति लब्धा है ये कर्म निरपेक्ष है, स्मृति प्राप्त हो गई आपको, बात पुरानी कोई याद आती है ना अचानक, तो उनमें कोई साधन थोड़ी करते हो, उनके मन बुद्धि का चिंतन थोड़ी करते हो, अचानक याद आ जाती है बात बीच में एकदम, तो वो स्मृति होती है, वो कर्म निरपेक्ष है, वो ही सहज अवस्था है, स्वाभाविक सुख साधन वही है, जैसे वो याद आवे ऐसे याद है। मैंने वहां सत्संग में कहा था कि करते हैं वो नकली होता है वो असली होता है, इस दर्श का था मामा सत्संग में, तो करना होता है वो नकली होता है, स्वतः स्वभाव वो असली होता है। दृष्टान दिया था कि हम परमात्मा चिंतन तो करते हैं और संसार का चिंतन होता है, आप साहब संसार की बात याद आती है, तो याद आती है वो असली है और करते हैं वो नकली है, तो हमारा संबंध संसार के साथ ज्यादा है और उसके साथ कम है। अब ये चिंतन करते करते अभ्यास अधिक हो जाएगा, श्रद्धा भक्ति अधिक हो जाएगी, तो परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक होगा, सत्य स्वाभाविक ही, और संसार की बातें याद करने पर आवेगी, ऐसी एक बात है। ऐसी
हम जो साधन करते हैं तो बाद में मन का भान चला जाता है, बाद में देह का भी भान चला जाता है, 40-45 मिनट तक रहता है, उसके बाद में शांति आ जाती है, वो हमेशा के लिए रुकती नहीं है,
शांति रुकती नहीं,
घंटा दो घंटा रहती है, बाद में
और तो वो गलती होती है, वो जो छूटती है वो गलती है, तो उसके लिए आप भगवान के अर्पित होकर के ऐसे पर जाओ, जैसे पक्षी होता है वो ऐसे उड़ता है, उड़ते 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 आगामी उसे जागरी ये हो जाता है, फिर चढ़ना जैसे पानी पर चढ़े, जैसे आकाश में वायु पर चढ़ता है, ऐसे पंख हिलाता नहीं, वो पंख ऐसा करते ऐसे, इस तरह से पहले चिंतन करते करते ऐसे हो जाए, इस तरह से भगवान की अर्पित होकर वैसे ही हो जाए, तो भगवान की अर्पित होने से फिर वे स्वतः होती है शांति, वो बढ़ जाएगी, मन वो आप कहता हो ज्यादा देर नहीं है ऐसे मिट जाती है, तो उस वक्त में वो जिस समय में शांति उस समय में भगवान की अर्पित हो जाओ, एक परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे हो जाओ, फिर कोई चिंतन हो जाए तो उसी परवाह मत करो, ध्यान मत दो, ये भी मत करो मेरे चिंतन क्यों हो गया, संसार चिंतन हो गया, उसकी परवाह ही नहीं, तुम बेपरवाह जितनी करोगे उतनी वृत्तियां ठीक शांत होगी, ऐसी अवस्था में।
अपनी किताब दी थी उसमें मैंने पढ़ा, वो शांति जो आती है उसका सुख नहीं लेना, नहीं तो आगे नीति योग नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
सुख लेना नहीं है, जैसे लोभी आदमी है उसको 10,000 रुपया मिल गया है तो वो अगर कमाने की विशेषता नहीं करता क्या, लाख मिल जाए तो और करता है, रुपयों में तो संतोष करना चाहिए, इस विषय में संतोष नहीं करना चाहिए, सुख तो मिलेगा पर सुख भोगना नहीं चाहिए, राजी नहीं होना कि और अगर ऐसा और होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, अंतर न पड़ने ऐसी बात रखने से बढ़ेगा,
शांति
बने नहीं, शांति और बढ़े, बनी रहे नहीं करना चाहिए और बढ़नी चाहिए, बनी रहे उनमें तो वहां स्थिरता हो गई, और बढ़नी चाहिए इसमें अगर चलेगा और बढ़नी चाहिए, ये तो थोड़ी होती है, ये थोड़ा आनंद है, ये तो पूर्ण हुआ ही नहीं है, ऐसी भूख लगनी चाहिए रहनी चाहिए तो उनसे आगे बढ़ेगा, फिर मन अगर ही उसको तो अभिलाषा बढ़नी चाहिए, बड़े फिर वो बढ़ेगी। जैसे देखो एक बात है, इसमें दृष्टांत रूप से बताता हूँ। जैसे अपने पहले चीज की इच्छा होती है, अमुक चीज चाहिए, फिर उसको जैसे हमारे घड़ी चाहिए तो घड़ी की इच्छा पहले हुई, पीछे अपने रुपया चाहिए, रुपया लाएंगे घड़ी लाएंगे ऐसा। और एक ऐसी बात हुई कि कोई चाहना तो है नहीं और रुपये आ गए, अब रुपयों का क्या करे भाई, तो भाई कोई काम फंसा दे वो। एक घड़ी में तो अच्छी बात है, फिर घड़ लिया हुए, ये दो बात समझेगी नहीं। तो पहले इच्छा होने ये गलती है, वस्तु आ जाए तो उपयोग क्या करे ये बात होनी चाहिए स्वतः। वो जो चीज मिले ये है दरिद्रता, ये दरिद्रता है और वो दरिद्रता नहीं है। अब आएगी वस्तु क्या उपयोग करे, अपने उपयोग क्या करें भाई, याद गया कैसे एक घड़ी आ जाए तो अच्छी बात है यार नाम में, तो वो दोष नहीं है इसमें। वो तो वस्तु आ गई तो उसको उपयोग करते हैं, मन में है ही कि रुपया आवे घड़ी आवे ऐसे हो जाए तो करे, है ही नहीं उनमें। इसी तरह से कुछ करना है ये मन में रहता है तब तक सुख साधन नहीं होता। करना कुछ भी नहीं है, अपने जो है जो स्थित रहना है जो रहना है, अपने करना क्या है, करना करने करना तो प्रकृति में पदार्थ और क्रिया ये सब प्रकृति है, समाधि तक प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत तत्व तो है। योग दर्शन में दो विभाग होते हैं, एक निरुद्ध अवस्था होती है, एक व्युत्थान है, समाधि व्युत्थान जो होता है, और पारमार्थिक प्रेम में और ज्ञान में आगे चलते दो अवस्था नहीं होती, एक ही अवस्था होती है, सब अवस्था स्वाभाविक वो अटल होती है, निरंतर होती है। वो स्थिति प्राप्त करना है अपने, तो वो प्रण करना नहीं, भगवान के शरण हो जाओ, तत्व ज्ञान हो जाए तो उनसे हो जाती है, शरण से भी हो जाती है वो, सर्वथा भगवान के शरण हो गया। इस वास्ते अपने दो प्रकार की निष्ठा बताई है, उसमें भक्ति की निष्ठा नहीं है, भगवान निष्ठा है वो, उनकी खुद की निष्ठा नहीं है। लोकेश में दृढ़ निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान का ज्ञान योग सांख्या नाम, कर्म योगी ने योगी नाम, तो सांख्य के सांख्य योग से, कर्म योग योगी योग से, ऐसा निष्ठा होती है। भक्त भगवान का अर्पण हो गया, अब उसकी निष्ठा हो गई। जिस तरह से ब्याह होने के बाद लड़की को कुछ भी चिंतन करना नहीं पड़ता, कुछ भी उद्योग करना नहीं पड़ता, पति की होने के लिए कोई कसौटी नहीं करनी पड़ती, सजा हो तो होगी, ब्याह हो गया बस खत्म हो गया, ये फिर भूली नहीं होती है। अच्छा उसमें एक बात है मन में जानने की, एक हम मन बुद्धि के द्वारा चिंतन करते हैं और एक आपके द्वारा स्वीकृति होती है, अपने खुद के द्वारा, जिसे मैं शिष्य हूँ, मगर ये गुरु जी मैं शिष्य हूँ, तो ये स्वीकृति होती है, मेरा विवाह हो गया मैं विवाहित हूँ, ये स्वीकृति होती है। ऐसी स्वीकृति शरणागति हो जाए फिर करना नहीं पड़ेगा, चुप साधन हो जाएगा, शरण तो हुआ ही मैं भगवान की शरण होगा, तो उनका यू क्यों परमात्मा का अंश हूँ मैं, जिसका अंश उसी के हूँ मैं, अमुक का बेटा हूँ जन थोड़ा ही उसका तो हूँ ही मैं परमात्मा का साक्षात। ऐसे शरण होने पर सुख साधन स्वतः होता है, स्वाभाविक सुख साधन होगा। ये आत्मसंस्था बिना के लेकिन चिंतित बात है, एक परमात्मा तत्व ये ऐसे विचार करके कुछ भी चिंतन न करे सुख साधन हो जाता है। परमात्मा के सेवा कुछ चिंतन करे तो परमात्मा चिंतन होगा, अचिंतन नहीं होगा। शर्मा जी मोक्ष सत्संग कहते हैं, शेर जी इसको अचिंत ध्यान कहते हैं, अचिंत ध्यान है अचिंत। कवि पुराणम मनुषा सितारम अणु अनुस्मृति सर्वश्रेधासन अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा पर अचिंत रूप है, वो चिंतन अचिंतना से ही मन उसके साथ हो जाएगा तो कर्म सापेक्ष होगा, और कर्म के साथ में नहीं स्वतः होगा तो कर्म निरपेक्ष हो जाएगा। स्वाभाविक वो है ही, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो हमारे चिंतन से परिपूर्ण है क्या? सत्य है ही वो, तो इस बात से चिंतन क्या कर रहे हैं? जैसे दिया सराय में अग्नि है उसको याद नहीं करते हैं दिया सराय में अग्नि है, जमीन में जल अग्नि है ही है, इस वजह से सत्य परिपूर्ण है। जैसे मेहंदी के पत्ते में डाली है ये याद नहीं करने पड़ती, किंतु इसमें है ही, वो लगो जो लाल हो जाएगा, सत्य है इसमें। ऐसे सब जगह परमात्मा है, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये भगवान का नाम लेते हुए वो क्रियात्मक साधन करे ना, विद्यात्मक साधन में भी परमात्मा परिपूर्ण है पहले से ही। मैं तो उसी चिंतन उसने वृत्ति करी है मैंने, वो परमात्मा तो है ही, ऐसे है कि दिल तक जितनी अधिक होगी उतना वो निषेधात्मक शुद्ध बदलती। ये विधि इसी की विधि है कि परमात्मा है, दूसरा नहीं है, संसार नहीं है। जैसे हरे राम है मैंने बताया था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हमारा हरे संसार आ गया, हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसके साथ कुछ है ही नहीं, वो ही हुआ है। तो संसार का निषेध हुआ, परमात्मा का विधि हुई, तो दोनों का नाम योग गीता में, दुख संयोग वियोग योग संगीत समर्थम योग से दोनों निश्चित एक ही होगा, निकरण लेते हो जाएगा अंत में साफ सतह। नारायण 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 नारायण।
क्या भोगों को विषय क्यों कहते हैं?
विषय तो अनुभव होता है, विषय विश्वास कहते हैं। किसी विषय का ज्ञान होता है ना तो वह है विषय, विषय ये विषय है। मानो परमात्म तत्व है उसका आप विषय भी कर सकते हैं, और वो स्वतः वो विषय नहीं होता है, और विषय संसार का जितना विषय ही होता है, विषय रहित ही होता ही नहीं है। परमात्मा का विषय करते हो, राम राम कृष्ण करते विषय करते हो, और सब से आप कुछ नहीं करते हो तो विषय न करने पर परमात्मा में स्थिति होती है, इसका उसका विषय नाम नहीं है। यह संसार का विषय ही होता है, स्वतः में स्थिति होती ही नहीं, ये तो नश्वर नश्वर है, इस बात से विषय कहते हैं।
एक कुछ है कि वो ऋणानुबंध की बात कहीं, तो आप हिंदू समाज में संतति निरोध करते हैं, उनके जन्म लेने वाली शेष संतानें कहाँ जन्म लेती है? तो आपके प्रवचन के माध्यम से सुना है कि वे संतान मुसलमानों के
मुसलमानी शाही वहाँ जन्म,
तो उन आत्माओं का ऋणानुबंध कैसे मिटता है?
ऋणानुबंध ज्यादा ऋणानुबंध होता है ना, उसमें से तकलीफ होती है, उसमें भाई पूरा देखो भगवान जाने। हम जो अपनी बुद्धि से पुस्तकों देख करके विचार करते हैं, अटकल लगाते हैं हम अपनी, है क्या वो भगवान जाने। ऐसी बात है कि ऋणानुबंध किसी का ही हो जाएगा, तो ऋणानुबंध में मैं संतति निरोध किया तो संतति निरोध कर दिया, इस पर भी कभी कभी जैसे तेल लीक होता है ना, ऐसे विषय लीक होकर के संदर हो जाएगा कभी कभी,
कच्ची रह जाती
है, वो बंद में कच्चा रह जाता है, जिनसे कभी कभी संतान हो जाती है, एक बात। दूसरी बात, वो किसी अपने कुटुंब में जिनके वो नसबंदी नहीं हुई है, उस कुटुंब में आकर के आपकी अनुकूल से रहकर आपके बेटे की तरह हो जाएगा, ऐसे ही निबंध कर लेगा। दूसरी ऋणानुबंध होगा, वो भी ज्यादा ऋणानुबंध होने रहता हो, थोड़ा जन्म नहीं होता है, जन्म का ज्ञान बंद होता है। ऐसा ज्ञान बंद रहने पर आपघात कोई करता है जानकर खुदकशी, तो खुदकशी भी नहीं मरता, वो जहर लेने पर नहीं मरेगा, फांसी भी नहीं मरेगा, क्योंकि दूसरे के साथ ऋण है तो उस हिसाब से नहीं चुका है, मैंने मर नहीं सकता पहले, जैसे जन्म में है वैसे मरने में भी है, ऋणा बंधु का कारण सुन नहीं मरता, ऐसे वो ज्यादा ऋण बंद है, मामा ऋणा बंधु छूट जाता है, वो तो ईसाई में मुसलमानों में वहां जन्म जाएगा, केवल मनुष्य शरीर ही प्राप्त करना है तो दूसरों जन्मेगा, अपने नहीं जन्मेगा यहाँ। नारायण 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 कर्म गहना कर्मणों गति, कर्म गति बड़ी गहरी है, इसमें मैंने अध्ययन किया भी है और करता भी हूँ, कर्मों के विषय में विभीषण बहुत कम आता है, गीता में आया है। नारायण 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 नारायण।
राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 नवंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम।